ओम शांति। प्रतिदिन जो विश्व योग के सब्जेक्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, बहुत सुंदर सारे विश्व की आत्माओं में, विशेष ब्राह्मण आत्माओं के लिए बहुत गाइडेंस का आधार बन जाता है। और इसी तरह आज का जो विषय रखा है कि परिस्थितियों के पार रहने वाला ही विश्व के लिए तारणहार बन जाता है। वैसे भी बाबा ने हम बच्चों को अनेक मुरलियों में भिन्न भिन्न रूप से ये बात स्पष्ट इशारे के रूप में दी है कि बच्चे आप ही इस विश्व के आधार मुहूर्त, उद्धार मुहूर्त हो। और इसीलिए हमारे हर कर्म, हमारा संपूर्ण जीवन अनेक आत्माओं के लिए एक आईना है, दर्पण है, जिसमें वो अपनी प्रतिमूर्ति स्पष्ट देख सके या उसमें से प्रेरणा प्राप्त कर सके कि हमारे सामने जब ऐसी परिस्थिति आए तो हमें क्या करना है। बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि कोई भी परिस्थिति जब आती है तो उसका कारण क्या होता है। कोई भी परिस्थिति का उद्भव कहां से होता है। अक्सर देखा गया कि जहां हमारे कमजोर स्वभाव संस्कार का प्रयोग होता है वहीं से कोई न कोई परिस्थिति का निर्माण होता है। जैसे दुनिया में भी आज हम देखते हैं कि मानो कोई बात बात में आवेश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आकर के जब स्वयं पर कंट्रोल नहीं होता और उस समय ऐसे वचन मुख से निकल जाए जो सामने वाले को तीर की तरह लग जाए, अब वो व्यक्ति भी अगर अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश होगा तो क्या करेगा। वो भी सोचेगा कि समय आने पर इसको पाठ जरूर पढ़ाऊंगा, और उसके लिए वो उस परिस्थिति को निर्माण करने के लिए निमित्त भी बन जाता है। भावार्थ यही है कि कोई भी परिस्थिति का उद्भव तभी होता है जब हम अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं। क्योंकि इंद्रिय जीत नहीं बने, विकारों जीत नहीं बने, इसलिए बार बार जब वो प्रयोग में आते हैं तो नेचुरल है जब इकट्ठा कुछ समय वो हो जाता है तो फिर वहां से परिस्थिति का निर्माण होना स्वाभाविक है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें अपने स्वभाव संस्कार पर अटेंशन रखना है। अब उसके ऊपर एक कड़ी नजर रखनी है कि ये प्रयोग में नहीं आना चाहिए। अब उसके ऊपर हमें विजयी होना ही है। लक्ष्य रखेंगे तो विजयी होना स्वाभाविक है। उसके बदले ऐसे समय पर जब हम अपने ज्ञान के मनन चिंतन में रहते हैं तो बाबा कहते हैं वो ज्ञान का मनन चिंतन जितना करते हैं तो नेचुरल है धीरे धीरे वो संस्कार हमारे पावरफुल बनते जा रहे हैं और फिर जब वो प्रयोग होने लगते हैं तो कई परिस्थितियों को सहज समाप्त करने वाले ये परिस्थिति से पार हो जाने वाले और ऐसे एग्जाम्पल बन जाते दूसरे भी उसमें से प्रेरणा लेते कि अच्छा ये बात आए तो हमें भी इस तरह से उसके ऊपर उससे मुक्त हो जाना है। ये सहज विधि है क्योंकि प्रैक्टिकल वो देखते हैं। बाबा ने कहा कि इतनी पावरफुल चीज जो हमें प्राप्त हुई है, ज्ञान का खजाना जो बाबा ने आकर दिया है, उस ज्ञान के खजाने का मनन चिंतन करते हुए उसको हम अपने संस्कारों में दृढ़ करें, उसके आधार पर हम अपने संस्कारों में स्वभाव में परिवर्तन ले आए। नॉलेजफुल होने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि कोई भी परिस्थिति का जब निर्माण होता है या हमारे सामने जब आती है तो परिस्थिति को देखते ही हमारे मन में क्वेश्चन शुरू हो जाए, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये क्या, अच्छा कहाँ हुआ, ऐसे अनेक प्रकार के क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। तो जो बाबा ने कभी हमें बिंदी लगाने की बात सुनाई, फुल स्टॉप लगा की बात, वो बिंदी नहीं लग पाई है। अगर क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए तो जरूर है उसके साथ व्यर्थ भी शुरू होगा और नेगेटिव भी आरंभ हो जाएगा और इसीलिए बिंदी लगेगी ही नहीं। क्वेश्चन 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 बढ़ते जाते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो जैसे बाबा कहते हैं कि वो बातों के विस्तार में चले जाते हैं और बातों के विस्तार में गए तो सार स्वरूप होना असंभव हो जाता है। जब तक सार स्वरूप ही नहीं हुए तो बिंदी स्वरूप कैसे बनेंगे। इसीलिए बिंदी लगाने के लिए ये विस्तार की जड़ों को हमें काटना होगा कि चलो जो हो गया सो हो गया, अब क्या करना है। बिंदी लगाओ इस बात को, अब समाधान को सोचो। इसलिए कई मुरली में बाबा ने कहा कारणों में नहीं जाओ कि ये कारण हुआ इसलिए ऐसा हुआ, ये कारण हुआ इसलिए ऐसा हुआ। कोई भी व्यक्ति परिस्थिति का भी निर्माण करने वाला होता है, उस व्यक्ति से भी अगर पूछा जाए कि भाई ये क्यों हुआ, क्या कारण देना शुरू करेगा कि ये बात हुई थी इसलिए कहा पड़ा, ये हुआ था इसलिए ऐसा, तो कोई भी इंसान कभी भी अपने आप को गलत बताएगा नहीं। और जब अपने आप को गलत बताएगा नहीं तो क्या करेगा, 10 कारण ढूंढेगा जरूर। तो उस विस्तार में उसकी बुद्धि चली गई तो बुद्धि की जो शक्ति है कितनी वेस्ट जाने लगी। इसीलिए जब कारण में जाने से भाई ये कारण ये कारण ये कारण ये कारण 10 कारण हम ढूंढ सकते हैं तो 10 निवारण भी तो ढूंढ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है बुद्धि के पास। तो इसीलिए बाबा कहे उस कारण को सोचे बड़े, अब हम उसको पार करने के लिए या उससे पार रहने के लिए कौन सा निवारण कर सकते हैं। बुद्धि के पास जैसे कारण ढूंढने की शक्ति है, क्षमता है, तो निवारण की भी शक्ति क्षमता है। लेकिन जब अगर इस दिशा में चली गई तो निवारण इस दिशा में है। अब दोनों ऑपोजिट है, कारण और निवारण एक दिशा में नहीं रहते हैं, दोनों ऑपोजिट दिशा में होते हैं। एक बार हमने अपने मन की एनर्जी को बुद्धि की शक्ति को क्षता कार्य चला दिया तो वो इस दिशा में तो जाएगी नहीं, हमें अपनी असमर्थ महसूस होगी। क्या आवश्यकता है बाबा हमेशा हमें कहते हैं, बच्चे कारण नहीं सोचो, निवारण पहले सोचो। इस दिशा में ले बुद्धि को तो आपको 10 निवारण भी मिलेंगे और बहुत बढ़िया निवारण सकते हैं, जिसमें से पार रहने की बात नहीं है लेकिन दूसरों के लिए भी तारणहार बन जाएंगे। तो ये हमारा चॉइस है अपना कि मुझे अपनी बुद्धि को कौन सी दिशा में ले जाना है, इस तरफ ही तरफ ले जाना है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाएं हैं। तब बाबा ने कहा कि समस्या के बारे में नहीं सोचो, परिस्थितियों के बारे में नहीं सोचो, समाधान के बारे में सोचो तो हमें मिलेगा। और हम बच्चों का कर्तव्य ही यह है अभी, क्योंकि दुनिया की सारी आत्माएं इतने नेगेटिव सोच सोच करके समस्या सोचने के अभ्यासी हो गए हैं, कारणों को सोचने के अभ्यासी हो गए कि उनकी बुद्धि निवारण के तरफ जाती भी नहीं है। इसीलिए जब हम कोई छोटा सा निवारण भी दे देंगे ना तो क्या कहेंगे लोग, अरे क्या बढ़िया बात बताई आपने, ये तो बहुत अच्छी बात बताई, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। ये अब हमारा कर्तव्य है, वर्तमान समय के हिसाब से भी। अब दिन प्रतिदिन परिस्थितियां तो बिगड़ती ही जाने वाली है, सुधरने वाली तो है नहीं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया की आत्माओं के संस्कार इतने तमोप्रधान है और वो तमोप्रधान संस्कारों का जो प्रयोग हो रहा है तो उससे कुछ अच्छा निकले ऐसा तो होने वाला ही नहीं है, तो उससे सिचुएशन बिगड़ती ही जाने वाली है। इसीलिए बाबा ने जब परसों भी पवित्रता की मुरली सुनाई तो उसमें क्या बताया, उसमें यही पवित्रता की डेफिनेशन जो बाबा ने दिया वो यही बताया कि जब हम उस संस्कारों से ऊपर हो जाते हैं, मानो कोई व्यक्ति अपने अशुद्ध संस्कारों के वश परिस्थिति हमारे सामने निर्माण करते हैं, तब बाबा ने पवित्रता की शक्ति का डेफिनेशन दिया कि पवित्रता उसको कहा जाता है जब आप शुभ भावना शुभ कामना ऐसे समय में भी प्रवाहित करो, वो नेगेटिव सोच करके परिस्थिति को और विकराल बना रहे हैं, ऐसे में आप पॉजिटिव सोच करके परिस्थिति को हल्का करते जाएं। तो ये है कि तारणहार बनना, इसको कहा जाता तारणहार बने हम, परिस्थिति हो ही नहीं, ये तो होना ही नहीं है, बढ़ने वाली है, चारों ओर से बढ़ेगी, लेकिन हमारी प्योरिटी की स्टेज क्या है। तो इसीलिए बाबा कह के आपकी पवित्रता की शक्ति इतनी पावरफुल हो जो कोई अगर आत्मा भी निमित्त बन करके आपके सामने परिस्थिति तो उसके प्रति भी फिर भी ये समझे ये परवश है, ऐसी आत्मा के ऊपर परोपकारी बनना है। ये नहीं कि उस आत्मा के विषय में पर चिंतन हम आरंभ करें, पर दर्शन शुरू करें और तीसरे की पर मत पर उसके लिए हम कुछ भी उल्टा सीधा कहना शुरू करे, ये प्योरिटी नहीं है हमारी। लेकिन प्योरिटी यह है कि हम ऐसे परिस्थिति के समय भी उस आत्मा के लिए परोपकारी बन जाए, उसी को तो तारणहार कहा जाता है कि उस आत्मा को भी हमने बाहर निकाल लिया, उसके साथ बैठ करके हम परचिंतन करना आरंभ कर देते हैं तो तारणहार हुआ या डुबोने वाला हुआ, क्या कहेंगे, डुबोने वाले हो जाएंगे। इसलिए हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें तारणहार बनना है। तो परोपकार वो तभी हो सकता है जब ये तीन पर से हम अपनी बुद्धि को फ्री कर देवे। उसको कहते प्यूरिटी पावर। ये प्यूरिटी पावर है। तो इसीलिए बाबा ने समय समय पर दुनिया की हालत क्या है ये हर कोई जानता है, लेकिन ये दुनिया की हालत में भी हमारा स्वरूप किस तरह का होना चाहिए। तो नॉलेज को यथार्थ रीति अप्लाई करना ऐसे समय पर बहुत आवश्यक है। दूसरी बात कि बाबा ने कहा कि जब कोई परिस्थिति आए उससे पर रहने के लिए और दूसरों को भी तारने के लिए ये साइलेंस में जाकर के सोचना है कि इस परिस्थिति को पार करने के लिए कौन सी शक्ति की आवश्यकता है। क्या मुझे सहन करने की शक्ति की आवश्यकता है, सामना करने की शक्ति की आवश्यकता है, सहयोग देने की लेने की शक्ति की आवश्यकता है, कौन सी शक्ति अष्ट शक्तियों में से कौन सी शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है। और फिर जब साइलेंस में बैठ करके उस परिस्थिति को देखते हुए डिटैच होकर के और फिर उस शक्ति को समझे कि ये शक्ति को यूज करेंगे तो हम खुद भी बाहर निकल जाएंगे, दूसरों को भी हम बाहर कर सकेंगे। फिर जैसे बाबा कहे कि आप शक्ति का आवाहन करो, शक्ति आएगी। लेकिन आवाहन कैसे करना है ये विधि भी बाबा ने बताई कि आप उस स्वमान में स्थित उस सीट पर सेट होकर के शक्ति का आवाहन करो तो वो शक्ति आपका सुनेगी। क्योंकि सीट की वैल्यू है। दुनिया में भी कोई सीट पर होता है और वो कोई ऑर्डर देता है तो उसके ऑर्डर्स को माना जाता है। सीट से उतर गया तो उसका कौन ऑर्डर मानेगा। तो ये विधि बाबा ने बताई है कि कोई भी परिस्थिति आई, चलो आई, अब उस परिस्थिति को पार करने के लिए कौन सी शक्ति की आवश्यकता है। तो साइलेंस में बैठ करके डिटैच होकर के न्यारा होकर के उस परिस्थिति को देखे और परिस्थिति को देखते हुए इस परिस्थिति में ये शक्ति की आवश्यकता है। और जैसे ही उस शक्ति को आवाहन करने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट हो जाओ। और सीट पर सेट हो करके अब हे शक्ति मुझे आवश्यकता है। और फिर देखो कि कैसे वो शक्ति स्वतः जैसे आपका कहना मान करके आएगी आपके पास में। और फिर जैसे ही उस शक्ति को आप यूज करेंगे तो सहजता से उसके ऊपर विजयी बन करके दूसरों को भी उस परिस्थिति से बाहर निकालने वाले बन जाएंगे। तो ये शस्त्र सारे बाबा ने हमें दिए। खाली नॉलेज दिया है इतना ही नहीं, लेकिन नॉलेज के साथ साथ शक्तियां भी दी हुई है। तो ये शक्तियों के माध्यम से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। तीसरी बात, मान लो कि परिस्थिति इमीडिएट एक्शन नहीं मांग रही है तो दूसरे दिन सुबह अमृत वेले बाबा के सामने वो बात रखे कि बाबा ये प्रॉब्लम है, ये परिस्थिति है, जैसे बाबा से डिस्कस करते हैं। कुछ समय अपने मन को शांत भी करे बाबा को सारी बात स्पष्ट करने के बाद और फिर बाबा से वो महसूस करे कि बाबा का दुआओं का हाथ मेरे सिर पे है। बाबा उस परिस्थिति में विजयी बनने के लिए विजय का तिलक मेरे मस्तक पर लगा रहे हैं और हर प्रकार की सामर्थ्य मुझ में भर गए। फिर बाबा कहते हैं, जाओ बच्चे, बाबा तुम्हारे साथ है। बाबा के साथ कंबाइन होकर के फिर उस परिस्थिति का सामना करना है। तो देखो, जब सर्वशक्तिमान साथ है, बाबा से विजय का तिलक लिया हुआ है, बाबा के वरदानी हस्त अपने मस्तक पर अनुभव किया हुआ है, और दिन में जब उस परिस्थिति को पार करने के लिए जाते हैं, तो कैसे विजयी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये महसूस करेंगे। प्रथम में जैसे विजयी होते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, और तब हम खुद को खाली नहीं लेकिन हमारे अनेकों को तारने के लिए निमित्त बन जाते हैं। इसलिए कहा कि अमृत वेले विशेष बाबा के साथ उस बात को डिस्कस करते हुए बाबा से सर्व शक्तियों की समर्थ प्राप्त करते हुए, वो वरदान आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, विजय का तिलक लेते हुए, फिर बाबा के साथ कंबाइन होकर के उस परिस्थिति को एड्रेस करना। तो देखो कैसे पार हो सकते हैं। खुद तो पार हो ही जाएंगे लेकिन अनेकों को भी तारण हार बनकर तारने ले सहजता से बन जाएंगे। तो ये तीन बातें अप्लाई करें हम तो भी सफल परिस्थिति में हम विजयी बाहर होकर के निकलेंगे और सहजता से अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के ऊपर भी विजयी हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए बाबा जो बच्चों को समय प्रति समय जो इशारा देते हैं, उन इशारों को समझते हुए उन बातों को अपने जीवन के स्वरूप में हम ले आए, जितना उसको स्वरूप में लाते जाएंगे तो हमारे लिए ये ब्राह्मण जीवन इतना एंटरटेनिंग महसूस होगा कि हर रोज एक नई चुनौती होने के बावजूद भी, एक नई परिस्थिति आने के बावजूद भी उस पार करने की जैसे हमारे पास शक्ति और समर्थ्य है, हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। ये नहीं महसूस होगा कि रोज लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में विजयी हो जाता है या उससे परे रहता है उसको कैसा फील होगा कि हम अनेकों की जिम्मेवारी उठाने के लिए भी सक्षम हो जाते, खुद की जिम्मेवारी के साथ साथ अनेकों की जिम्मेवारी उठाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और बाबू अभी ऐसे बच्चों की आवश्यकता है। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।
झरनों से संगीत है धरता, पत्थर काम तुम।